traffic, stop like,
इसलिए देते हैं कि वरदान देने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ता है, यह बाध्यता है। आप पूछेंगे कि कैसी बाध्यता है। मैं कर्म करता हूं, जब मैं कर्म करता हूं तो उसका फल कौन देता है? क्या मैं अपने पुरुषार्थ से उस कर्म का फल ले लेता हूं? यह प्रश्न थोड़ा सा चिंतन करने के योग्य है। मैंने कर्म तो किया, पर इस कर्म का फल मुझे कौन प्रदान करता है? क्या मेरा यह कर्म ही मुझे फल दे देता है? मैंने अपने अहंकार से प्रेरित होकर के कर्म किया, क्या इसमें मेरे पुरुषार्थ के अलावे बाहर का तत्व कारण स्वरूप नहीं है फल देने? आप पूछेंगे कि इसे और खुलासा करके कहो, तो हम यह कहेंगे, एक किसान है, वह बहुत पुरुषार्थ करता है, बड़ा उद्यमी है, बहुत सुंदर उसने खेत में हल जोत लिया, बढ़िया बीज वह कहीं से ले आया, बीज वो देता है, जल की सिंचाई भी बहुत बढ़िया करता है, देखना पड़े तो बराबर वह देख भी लेता है, फसल उसकी लहलहा रही है, और किसान सोचता है कि बस 20-25 दिन में फसल पक जाएगी, इस समय तो 20 आने फसल हुई है, बहुत उसने उद्यम किया है, पुरुषार्थ किया है। फसल काटने से ठीक 5 दिन पहले पाला पड़ जाता है, सारी फसल नष्ट हो गई। अब किसान ने उद्यम तो बहुत किया था, और यह भी उद्यम किया था, पुरुषार्थ किया था, यदि उसका स्वयं का पुरुषार्थ ही फल प्रदान करने वाला होता, यह पाला क्यों पड़ गया? यह क्या है? तो यही बताता है कि बृहत्तर तत्व है जो हमारे कर्मों का फल प्रदान करता है, और वह बृहत्तर तत्व कौन सा है? वही समष्टिगत अहंकार। मैं व्यष्टिगत अहंकार के द्वारा पुरुषार्थ तो करता हूं, पर जो फल मिलता है वह समष्टिगत अहंकार के माध्यम से मिला करता है, और इसी को प्रतीक के रूप में शिव कहा है, ये समष्टि अहंकार के देवता हैं। तो कर्म जीव अपने व्यक्तिगत अहंकार से प्रेरित होकर के करता है, और ये जो शिव है समष्टिगत अहंकार, वे कर्म का फल प्रदान करते हैं। तो जैसे देवता कर्म करेंगे, तप करेंगे, तो उनका फल भी शिवजी देंगे, उसी प्रकार जब दैत्य भी तप करेंगे तो उनका फल भी शिवजी ही देंगे, बाध्य है, क्योंकि वे समस्त अहंकार के देवता हैं, और इसीलिए समान रूप से जो भी कर्म करता हो, तपस्या करता हो, उसका फल शिवजी को देना ही पड़ता है। तो आए रावण के पास और लेकर के आए ब्रह्मा जी को। रावण ने कहा, ठीक है आप वरदान देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि सोचो, अमरता का वरदान तो नहीं मिलेगा, और इसके बाद जो भी तुम मांगना चाहते हो मांग लो। तब कहा रावण ने, ठीक है अमरता का वरदान नहीं देते तो मत देते, मत दो, हमें अब यह वरदान दे तो हम काहू के मरे ही न मारे। कहा ब्रह्मा जी ने, अभी तुमसे हमने कहा कि अमरता का वरदान नहीं मिलता और तुम यही मांगते हो, हम काहू के मरे ही न मारे, हम किसी के मारने से न मरे। यह रावण की मनोवैज्ञानिकता को प्रदर्शित करता है, वह और कुछ भी मांग सकता था, पर उसको तो मरने और मारने में रुचि है, वह चाहता है कि हम सबको मारे पर कोई हमें न मारे, यह उसकी जो मनोवैज्ञानिकता है। तो ब्रह्मा जी ने जब छिड़क करके कहा, तुमने क्या पहले सुना नहीं कि हमने कह दिया था अमरता का वरदान नहीं मिलता? रावण बोला कि आपने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं, और आप लगे झिड़क में, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। क्या है तुम्हारी बात? हम काहू के मरे ही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। ये तो मैं कह रहा था पर आपने सुना ही नहीं, बंदर और मनुष्य इन दो को छोड़कर के हम किसी से न मरे। अब तो श्री जी ने ब्रह्मा जी की ओर देखा, कहिए क्या कहूं? ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु कह दीजिए। ठीक है, श्री जी ने तथास्तु कह दिया। अब यह जो कह दिया, इसीलिए ब्रह्मा जी कहते देवता से, तुम वानर को करके जाओ जाओ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही वे मरने वाला है, तुम्हारी सहायता से, तुम प्रभु की सहायता करोगे, प्रभु मनुष्य रूप में जा रहे हैं, और तुम वानर रूप धारण करके उनकी सेवा में सन्नद्ध हो जाओ, हरि पद सेवा हो जाए, और इसलिए हम देखते हैं कि ये आते हैं, और हम पढ़ते हैं कि जो जाम्बवान हैं, वृक्ष हैं, वे संभूत होते हैं ब्रह्मा जी के अंश से, नलवीन अश्विनी कुमार के अंशों से आते हैं, यह हम पढ़ा करते हैं। जो सुग्रीव हैं वे सूर्य के अंश से आते हैं, यह पढ़ते हैं। जो हनुमान जी हैं वे मरुत, या जिसे हमने कहा प्रारंभ में कहा कि शिव जी एकादश रुद्र, उनका एक अंश एक रुद्र, मरुत के माध्यम से पवन के माध्यम से उनके सुत के रूप में हनुमान जी के रूप में अवतीर्ण होता है। अब हनुमान जी छलांग मारते हैं, देखते हैं कि यह फल है लाल लाल बड़ा सुंदर, और छलांग मार करके मुंह में निकलने की चेष्टा करते हैं। तो प्रारंभ में ही हमने वह एक प्रश्न रखा, ज्ञानियों में अग्रगण्य होकर के उसे फल समझेंगे, यह क्या है? तो इसको चिंतकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से देखा है। तो जैसे यह कहा गया, हनुमान जी में यह जो भूख है, यह किसकी भूख है? वे तो ज्ञानियों में अग्रणी है, सूरज को फल समझते हैं क्या? और नहीं समझते हैं तो सूरज की ओर क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं, सूरज प्रकाश स्वरूप है, सूरज बुद्धि का देवता है। तो हनुमान जी जो छलांग मारते हैं सूर्य की ओर, वह प्रकाश की ओर छलांग, वह मानो बुद्धि की ओर छलांग। वे बुद्धि के भूखे हैं, प्रकाश के भूखे हैं, जन्म लेते हैं और प्रकाश की भूख उनके भीतर में आ गई है, यह बुद्धि की भूख है। मनुष्य को भूख तो सताती है, जैसे शरीर की भूख है, इस भूख को तो हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उसी प्रकार मन की भूख है, बुद्धि की भी भूख है। जब शरीर भूखा होता है तो हम चाहते हैं कि हमें भोजन मिल जाए, यह तो हम चाहते हैं। कोई मनुष्य ऐसा नहीं चाहता कि हमारी भूख मिट जाए, जिससे यह खाने पीने की झंझट ही खत्म हो जाए। खाने पीने की झंझट कितनी है यह आप लोग जानते हैं? हम लोग तो बहुत कम जानते हैं, जो मिल जाता है खा लेते हैं, पर आप लोग जानते हैं कितने आइटम्स होने चाहिए, कितनी चीजें बननी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो मतलब यह है कि जो शरीर की भूख है, अगर ऐसा कुछ हो कि मनुष्य को भूख ही न लगे तो क्या उसे आनंद आएगा? मुझे तो नहीं लगता कि उसे आनंद आएगा। हम तो सोचते थे कि अगर भूख न लगे तो बहुत अच्छा हो, ये सब सारी परेशानी दूर हो जाए। ऐसा लगता था जब हम उत्तराखंड में थे, तपस्या करते थे, अगर भूख खत्म हो जाए तो कितना अच्छा है, ये खाने पीने की झंझट कहां फिर से। और एक दिन सचमुच ऐसा ही हो गया कि भगवान ने भूख बंद कर दी, तो हमें आनंद तो नहीं आया। हम फिर वहां पहाड़ में किसी वैद्य और चिकित्सक को देखने लगे कि महाराज हमको भूख नहीं लगती है, जरा कुछ चूर्ण दीजिए, दवा दीजिए। क्यों? भूख नहीं लगती है, आप चूर्ण देंगे दवा देंगे तो जरा भूख लगेगी ताकि हम खा सके। अब तपस्या कर रहे हैं, पहले मना रहे थे कि भूख न लगे, भूख से छुटकारा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, कहां ये झंझट, भिक्षा करो कहां पर जाकर के लाओ फिर खाओ, समय जाया हो, बस भगवान का नाम करेंगे। और सचमुच एक दिन जब भूख ही बंद हो गई तो चिंता दूर होने के बदले बढ़ गई, भाग रहे हैं चिकित्सक के पास कि ऐसा कुछ दे दीजिए जिससे भूख लगे। यह जो भूख का लगना है यह स्वास्थ्य का सूचक है। शरीर में भूख लगती है इसका मतलब है कि आपका शरीर स्वस्थ है, आपको भूख लग रही है। शरीर में भूख न लगे तो आपको कोई खुशी नहीं होती। आप चिकित्सक और डॉक्टर को खोजते हैं तो ठीक यही बात मन और बुद्धि के संबंध में भी लागू होती है, पर इसको हम भूल जाते हैं कि हमें मन की भूख नहीं है या बुद्धि की भूख नहीं है। नहीं है इसका मतलब है कि बुद्धि में कहीं कोई अस्वस्थता है, मन में कहीं पर कोई अस्वस्थता है, और इसीलिए हमें मन की भूख या बुद्धि की भूख नहीं सता रही है। तो सतानी चाहिए, भूख को हम जगाते हैं और जगा करके उस भूख को शांत करते हैं, यह प्रक्रिया है। तो हनुमान जी जो छलांग मारते हैं तो यह प्रदर्शित करती है उनकी छलांग की वे बुद्धि के भूखे हैं, प्रकाश के भूखे हैं। तो मन में भी भूख लगनी चाहिए, जैसे हमें शरीर की भूख सताती है, हम भोजन लेते हैं तो हमें यह भी लगता है कि जो भोजन हमें प्राप्त हो आदर भाव से प्राप्त हो, कोई कह ले आया है ले ले, ले जा, तो शरीर की भूख तो मिट जाएगी पर मन की भूख संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि सम्मान से भोजन मिला नहीं। मन कैसा कैसा करता है, अरे क्या देखो तो मैं कितना बड़ा साधु हूं, मुझे उसने भिखारी ही समझ लिया, यह मन में ठेस होती है। तात्पर्य यह है कि मन की भूख भी हमारे साथ चला करती है। इसे भी हम समझते हैं कि सम्मान के साथ ठीक ढंग से हमें वह भोजन प्राप्त हो, और फिर वह बुद्धि की भूख है जिसे हमने प्रकाश की भूख, विवेक की भूख कहा है, और यह भी अगर हमारे भीतर में न जगी हो तो इसे जगाना पड़ता है। इसको जगाने की प्रक्रिया है और उसको शांत करने की भी प्रक्रिया है। जैसे भोजन है, एक भोजन तो वह होता है कि जो उतना सुस्वादु नहीं होता, पर ठीक है, हमारी भूख को शांत कर देता है। भोजन का दूसरा प्रकार वह है कि जो सुस्वादु होता है और उसे भूख न लगने पर भी मनुष्य खा लेता है। पर सुस्वादु भोजन के साथ एक धोखा यह है, जोखिम यह है कि मनुष्य कुछ अधिक खा ले तो वही फिर उसे अस्वस्थ भी बना देता है। इसके लिए सावधानी बरतनी पड़ती है कि भोजन सुस्वादु भी हो और उसके साथ ही साथ स्वास्थ्यवर्धक भी हो, दोनों हो। अगर ऐसा मिल जाए तब तो वह सबसे उत्तम भोजन है। तो यदि शरीर की भूख के साथ साथ मन और बुद्धि की भूख ऐसी हो जिससे समायोजन ठीक तौर से होता रहे, तो इसको तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अगर यह देखना है तो हनुमान जी के जीवन में उनको दोनों प्रकार की भूख सताती है और दोनों पक्ष हमारे सामने आते हैं। जब मां के पास जाते हैं, जगत जननी सीता जी के पास, तो वहां तो यही कहते हैं उनको जो समय भूख सताती है और बहुत भूख सताती है, जहां पर वे कहते हैं, वे कही रहे हैं, मां के पास गए और मां से कहते हैं, फल देखा उन्होंने रावण की अशोक वाटिका के फलों को देखा, तो कहते हैं कि मां तो अतिशय भूखा, मैं बहुत भूखा हूं। खाली केवल इतना नहीं कहते कि मैं भूखा हूं, कहते अतिशय भूखा, मुझे बहुत भूख लगी है। तो यह भी एक भूख है जो हनुमान जी के जीवन में आती है, और वह संदर्भ है माता और पुत्र का। मां और पुत्र जब मिलते हैं बहुत दिनों के बाद, या जब भी मिलते हैं, मां और पुत्र का संबंध तो खाने और खिलाने से है। यही पर स्नेह, माने स्नेह का जो प्रकाशन होता है, वात्सल्य का प्रकाशन, वह इसी के माध्यम से होता है। क्योंकि पुत्र ने माता को जो जाना है, वात्सल्य को जो जाना है, वह तो क्षुधा के माध्यम से ही जाना है। प्रारंभ ही तो क्षुधा की तृप्ति के माध्यम से हुआ है कि बालक या पुत्र या पुत्री माता को जो जानती है या जानता है, कैसे होता है, क्षुधा की पूर्ति से। जब से पैदा हुआ, मां उसकी क्षुधा की पूर्ति करती है, इसके संबंध यह। तो इसीलिए हमने कहा कि हनुमान जी में यह जो समायोजन है, शरीर की भूख ही दिखती है जब मां के पास है, और बुद्धि की भूख है, वे सूरज की तरफ छलांग मारते हैं और उसे लीन लेते हैं, तो यह भी हमारे सामने यह दिखाई देता है तत्व। तो सूरज के पास तो और भी जाने वाले लोग हैं, सूरज के पास पहुंचने की अभिलाषा, प्रकाश के पास पहुंचने की अभिलाषा रामचरितमानस में ही आता है। आप प्रसंग पढ़ते हैं कि दो व्यक्ति ऐसे हैं, दो चरित्र ऐसे हैं रामचरितमानस में, कि जैसे हनुमान जी सूरज के पास गए, तो वैसे ही ये दोनों चरित्र भी सूरज के पास पहुंचने की चेष्टा करते हैं। आप पढ़ते हैं वहां पर जब बंदर लोग चले गए, समुद्र के पास आए हुए हैं, जिस समय आप पढ़ते हैं विवेक प्रभा ने, स्वयं प्रभा ने कह दिया, गुफा में, स्वयं प्रभा की गुफा में घुसे हनुमान जी के नेतृत्व में, और स्वयं प्रभा ने कहा कि ठीक है, अभी तक तुम लोग आंखें खोल करके खोज रहे थे, अब इस समय तुम लोग आंखें मूंद करके खोलो। अब यह भी एक विचित्र संकेत है कि किसी को खोजा जाए तो आंखें खोल करके खोजे या आंखें बंद करके खोजे। मान लीजिए कोई चीज गुम गई है, तो आंखों को खोल करके खोजूंगा या आंखों को बंद करके खोजूंगा। स्वयं प्रभा बड़ी विचित्र बात कहती है कि तुम लोग अभी तक आंखें खोल करके खोज रहे थे, अब इस समय तुम लोग आंखें मूंद लो। और जिस समय बंदर आंखें मूंदते हैं तो कहां देखते हैं,
बहुभाति गिरि कंदरा सुनी संपाति, बाहर हो देखी बहु कीता, दिल आहार मोह जगदीशा, आज सबन कर भक्षण करऊ, बहु दिन चले आहार बिनु मरऊ।
एक संपाति नाम का गिद्ध था, बातचीत सुनी बंदरों की, बाहर आया, देखा बहुत से बंदर हैं, का वाह प्रभु तू धन्य है, मैं बहुत दिनों से भूखा था, तो आज तो तूने एक नहीं कितने बंदर दे दिए, आज सबको एक साथ खा जाऊंगा। और अपनी भूख को मिटाऊंगा। सब तो डर गए और जब डर गए सोचने लगे कि अरे यह तो हमें खा जाएगा, इतने बंदर हैं। अब इतने बंदर हैं, एक एक बंदर बहुत बलशाली है, परंतु उस गिद्ध को संपाती को देख करके ये सब के सब बंदर डरते हैं। तब अंगद विचार करके कहते हैं, कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु समको नाही। बड़े मनोवैज्ञानिक थे, सोचा कि शासन में विपत्ति से बिना लड़े छुटकारा मिल जाए तो अच्छा है। तो कैसे बिना लड़े छुटकारा मिल जाए? तो कहा कि वाह, जटायु के समान धन्य कोई नहीं। क्या हो गया? राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। एक वह भी गिद्ध था भैया, कि राम काज के लिए जिसने अपने शरीर को त्याग दिया और हरिपुर चला गया, और एक गिद्ध यह है जो कहता हम लोगों को खाऊंगा। यह जब विश्लेषण किया अंगद जी ने तो बात तो गई, क्योंकि अंगद जी तो सुना करके ही कह रहे थे। वह गिद्ध बाहर आया, संपाती बंदर डरने लगे। संपाती ने अभय दान दिया, डरो मत, यह किसने कहा, जटायु की बात किसने कही? अंगद जी बोले, मैंने कही। बोलो बोलो और क्या कहो जटायु के बारे में? और उसने कहा कि जटायु मेरा भाई था। यह दोनों का संबंध कि जटायु भाई, जटायु और संपाती ये दोनों सगे भाई हैं। अब गिद्ध के साथ एक विशिष्टता है। क्या विशिष्टता है? उसकी आंखें बड़ी पैनी होती हैं और उसके डैने भी बड़े प्रबल होते हैं। ये दो चीजें, आंखें पैनी, देखने का पैना, ज्ञान उसका पैना, और यह जो डैना है यह कर्म का सूचक है। तो कर्म और ज्ञान दोनों उसके प्रबल होते हैं, देखता भी बड़ी दूर तक है, और उसके डैने भी मजबूत होते हैं, वह जितना चाहे उठ जाता है। परंतु गिद्ध के साथ एक विडंबना यह है कि आंखों का उपयोग वो बहुत क्षुद्र कार्यों के लिए करता है, ज्ञान का उपयोग जो क्षुद्र कार्य के लिए करे। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, गिद्ध एक विचित्र प्राणी है, बहुत ऊपर उठता है पर उसकी नजर कहां रहती? बहुत नीचे रहती, कहां मरा हुआ मुर्दा पड़ा है, कहां लाश पड़ी है। उतने ऊंचे उड़ करके केवल यह देखना कि नीचे कहां पर मुर्दा पड़ा है, ताकि झपट करके उसे खा ले। तो यह तो न तो डैनों का उपयोग हुआ, सदुपयोग हुआ, और न आंखों का सदुपयोग हुआ। यह गिद्ध है जिसके पास पुरुषार्थ भी बड़ा प्रबल, जिसके पास ज्ञान के नेत्र भी बड़े तीखे और पैने, परंतु दोनों का सदुपयोग नहीं कर पाता है, ये ऐसा यह गिद्ध प्राणी है। तो ये दोनों मिलकर के यह कहता क्या है, संपाती सुनो भाई, जटायु की बात तुमने कही, पूरी कथा बताओ। अंगद जी ने पूरी कथा बता दी। तो कहता है संपाती, क्या बताएं, हम दो बंधु प्रथम तरुणाई गगन गए रवि नकट उड़ाई। हम जब दोनों बंधु थे, या तुम देख रहे हो मेरे पंख नहीं है ना, आश्चर्य कर रहे होगे कि इसका पंख जल गया है। तो तुम्हें अपनी गाथा में कहता हूं कि हम जब दोनों भाई बड़े तरुण थे, युवक थे, तो अपनी युवावस्था में गगन गए रवि निकट उड़ाई, हम सूरज के पास उड़ते हुए चले गए। अब तेजन सही तक सो फिर आवा, मेरा जो भाई था जटायु, जिसकी बात तुमने अभी कही, वह तेज सूरज का सह नहीं सका और वह लौट करके आया। ये बंदर फिर बहुत मानो एक गौरव की दृष्टि से देखने लगे संपाती की ओर की। देखो तो जटायु तो लौट करके आ गया, पर इसका मतलब कि आप तो फिर रवि के पास गए, उड़ते हुए सूरज के पास चले ही गए। बड़ी प्रशंसा की बात है कोई सूरज के पास चला जाए। जटायु तो ताप नहीं सह सका, वापस लौट आया, और मैं अभिमानी रवि नियर आया। मानो उसको अपनी दुर्बलता का, अपने दोष का बोध होता है, मैं तो रवि के पास पहुंच गया। पर जानते हो तो वह पुरुषार्थ तो था, पर मेरा विवेक नहीं था, मैं अभिमान के वश सूरज के पास चला गया। और जब अभिमान के वश सूरज के पास चला गया तो देख ही रहे हो मेरे दोनों डैने जल गए और मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। डैने तो दोनों के नष्ट हुए, जटायु के डैने भी नष्ट हुए, वह भी पृथ्वी पर गिरा। संपाती के डैने भी जल गए, वह भी पृथ्वी पर गिरा। पर एक प्रभु के कार्य में और दूसरा अपने अभिमान के वश। पर जो हो, संपाती के भीतर में भी कुछ तो विवेक था। जटायु का विवेक जल्दी काम करता है, सूरज के पास से लौट आता है, कहता है क्या है, या जो हम जा रहे हैं यह प्रदर्शन की ही तो वृत्ति है कि मैं सूरज के पास जाऊं। किसलिए सूरज के पास जाऊं? जान रहा हूं कि ताप बहुत अधिक है, केवल यही बताने के लिए ना मैं जा रहा हूं कि देखो संसार में और कोई सूर्य के पास नहीं पहुंच सका, पर हम हैं जो सूरज के पास पहुंच गए। तो एक तो वह भी ज्ञान होता है जो अभिमान की पुष्टि के लिए होता है, एक ज्ञान वह है जिसके बल पर हम प्रदर्शन करें कि मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं इतना ज्ञानी हूं। उस ज्ञान के डंडे से मैं समस्त जगत को प्रकंपित करता रहूं कि मेरा जो ज्ञान है, मेरी जो बुद्धि है, इतनी बलशाली, इतनी प्रचंड है। एक ज्ञान का रूप हुआ है। और दूसरा ज्ञान क्या है? जो कहता है कि क्यों अभिमान में नष्ट करते हो, चलो प्रभु के कार्य में लगा दें। वह जटायु था जिसने प्रभु के कार्य में लगा दिया, उसके दैने भी नष्ट हुए, पर उन दैनों को नष्ट करता है प्रभु के कार्य में लगा करके। उसका पुरुषार्थ जो बुझ जाता है वह प्रभु के कार्य के लिए, और संपत्ति का जो है देना है उसका जो पुरुषार्थ है उसके अभिमान की सिद्धि में जल जाता है, पर उसमें भी विवेक है। इसलिए जटायु को यदि भगवान राम उठाते हैं तो संपत्ति को चंद्रमा मुनि उठाते हैं। अब या तो ईश्वर जीव को उठाए या संत उठाए, दो ही तो उठाते हैं। जीवों को उठाने का कार्य या तो ईश्वर का या संत का, तो ईश्वर ही आकर के साक्षात जटायु को उठाते हैं, अपनी गोद में लेते हैं, कथा हम जानते हैं। और जटायु का जीवन चरितार्थ होता है, संपाति का जीवन चरितार्थ कब होता है? हम पढ़ते हैं चंद्रमा मुनि ने तो उठा दिया और कहा कि देखो तुम्हारे पास यह तीव्र दृष्टि तो है, ज्ञान के नेत्र वह पहने तो है, पर तुमने केवल अभिमान की पुष्टि में ही यह सब कुछ लगाया है। क्या करो? प्रभु का कार्य करो। और संपाति प्रभु का कार्य करता है, और प्रभु का कार्य क्या है? वो वहीं पर बैठ करके देखता है और सीता जी का पता लगा देता है। अपनी दृष्टि से जो भक्ति को देख ले, अपनी दृष्टि से जो भक्ति का पता लगा ले, तो यह संपत्ति के जीवन की धन्यता है कि तुम लोग भक्ति की खोज में चले हुए हो। तुम लोग यह जानना चाहते हो कि भक्ति देवी कहां पर है, तो ठीक है, मैं अपनी दृष्टि से तुम्हें बता देता हूं। तुम देख तो रहे हो कि मेरे पास तो दैने है नहीं और तो कोई पुरुषार्थ नहीं है, तो जो अंग मेरा काम कर रहा है उस अंग के माध्यम से तुम्हारी जितनी सेवा बन सकती मैं करता हूं। और वो भक्ति देवी का पता बताता है कि भक्ति देवी कहां है, सीता जी कहां है। कहता है कि मेरी तो दृष्टि बहुत है। जब कहने लगा संपाति, कहने लगा कि देखो वह रावण की लंका है, वह अशोक वाटिका में देख रहा हूं, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे मैं सीता जी को बैठा हुआ देख रहा हूं। बंदर आंखें फाड़ करके देखते हैं। संपाति कहता है कि तुम नहीं देख सकते, मैं देख सकता हूं, बूढ़ो दृष्टि अपार, क्योंकि इस गीत की दृष्टि जो होती है बड़ी अपार होती है, तो इस दृष्टि के सहारे मैंने तुमको पता बता दिया, अब तुम लोग खोज कर सकते हो। तो यह जो यहां पर जो कहा गया कि विवेक की भूख, प्रकाश की भूख, यह भूख तो इनमें भी है, संपाति और जटायु में, परंतु इनकी यह जो भूख है वह प्रदर्शन के लिए, अपने अहम की तुष्टि के लिए है। यह अपने अभिमान को और भी बढ़ाने के लिए है कि संसार में देखो कोई सूरज तक नहीं जा पाया, हम जा रहे हैं। तो ज्ञान अगर केवल यही दिखाने के लिए हो, जैसे वेदों ने प्रार्थना की प्रभु की, जब प्रभु का राज्याभिषेक हुआ, हम पढ़ते हैं उत्तरकांड में, तब वे यही तो कहते हैं, तो जहां पर यह कहते हैं कि जिन्होंने प्रभु ज्ञान मान विमत्त भव, जहां पर वे कहते हैं तब भव हरणी भक्ति न आदरी, कि जिन्होंने जो ज्ञान मान में विमत्त होकर के यह जो आपकी भक्ति है जो भव का हरण करती है, जो आदर नहीं करते, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। हरि, हमने यह देखा है कि सुर दुर्लभ पदों को पा करके भी ज्ञान के मान में विमत्त होने के कारण वे गिर पड़ते हैं। तो ज्ञान मान में जो विमत्त हो ऊंचे जाकर के भी नीचे गिर पड़ता है। और भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी को समझाते हुए कि वहां पर माने ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान आया उसके जीवन में, वह सब में सबको समान उसी ब्रह्म को देखता है। वह ज्ञान उसमें अभिमान की सृष्टि नहीं करता बल्कि समानता की सृष्टि करता है। और एक ज्ञान वह है जो अभिमान की सृष्टि करता है। तो संपाति के जीवन में यह जो विवेक या सूरज की भूख थी, प्रकाश की भूख थी, उसमें अभिमान की सृष्टि की। और हनुमान जी के जीवन में वे प्रकाश के भूखे तो हैं, भूखे हैं और निगलते क्यों हैं, बड़ा सांकेतिक तात्पर्य विनय पत्रिका में व्यक्त करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि हनुमान जी प्रकाश के भूखे भी हैं और प्रकाश के संरक्षक भी हैं। उनको यह लगा कि यह राहु आ रहा है सूर्य को निगलने के लिए, और हनुमान जी सोचते हैं कि हमारे स्वामी ने, हमारे प्रभु ने सूर्य वंश में अवतार लिया है, तो सूर्य वंश में जब प्रभु ने अवतार लिया है उस सूरज को निगलने के लिए एक राक्षस आए या मैं नहीं सह सकता, और इसके लिए वे निगल करके सूर्य की रक्षा करते हैं उस दैत्य से, उस राक्षस से जिसका नाम राहु है। तो केवल ये प्रकाश के भूखे ही नहीं, प्रकाश के संरक्षक भी हैं। तो ऐसे परम संत हनुमंत के संबंध में और 3 दिन आपके समक्ष चर्चा करेंगे। यह लेंगे कि वे सुग्रीव को कैसे प्रभु से मिलाते हैं, विभीषण जी को कैसे प्रभु से मिलाते हैं, भक्ति के स्वयं अपने जीवन में दर्शन किस प्रकार से करते हैं, यह हम आगे 3 दिनों में आपके समक्ष लेंगे। थोड़ा सा हरि नाम संकीर्तन हम लोग कर लेते हैं।
भाई वसंत कुमार जी, स्वामी निखिलात्मानंद जी, जो भी हो और सज्जन परम संत हनुमंत, कल पहला विचार आपके समक्ष हमने किया था और यह देखा था कि संत और परम संत में क्या अंतर होता है। हनुमान जी परम संत हैं, जो जीवों को भगवान से मिला देते हैं और ईश्वर को प्रेरित करते हैं कि वे जीव से मिलने के लिए नीचे उतर आए। दूसरी चर्चा करने से पूर्व आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन कर लें।
राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम,
Thank you.